السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا. یہ مہینہ جہاں عبادات کا مہینہ ہے، وہاں پہ محاسبے کا مہینہ بھی ہے. اس میں انسان اپنا حساب کتاب کرے سال بھر کا. دن میں جب آپ روزے سے ہوتے ہیں، کچھ فراغت مل جاتی ہے. قرآن پڑھ کے بھی بعض دفعہ انسان تھک جاتا ہے، تلاوت بھی اب نہیں ہوتی، نماز کا بھی کوئی وقت نہیں ہے. تو چاہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دیر کے لیے اپنا محاسبہ کیجیے. یہ بھی ایک عبادت کی ہی شکل ہے کہ انسان دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. ہمارے اسلاف اپنا سخت محاسبہ کیا کرتے تھے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یعنی آپ کہیں بیٹھ جائیں ایسی جگہ پر جہاں پر بالکل خاموشی ہو، تنہائی ہو، اور سوچیں اپنی زندگی کو کہ کہاں کھڑی ہوئی ہوں، آگے کے لیے میں نے کتنا کیا ہے اور کتنا بھی کرنا باقی ہے، کون سی چیزیں ہیں جو میں نے ابھی تک ڈیلے کی ہوئی ہیں، جو ابھی تک میں کر نہیں پائی، اور ہر دفعہ ارادہ کرتی ہوں اور ہو نہیں پاتا. کون سی چیزیں ہیں جو میں نے ابھی تک سوچی بھی نہیں کرنے کی، کون سی چیزیں ہیں جو کر چکی ہوں مگر کیسی کی ہیں. جیسے مثلا نمازیں ہیں تو کیسی پڑھی ہیں، کتنے خشوع کے ساتھ پڑھی، کتنی چھوڑ دیں، کتنی ادا کی، کتنے اضافے کی ضرورت ہے، نوافل میں کہاں کہاں اضافہ کر سکتی ہوں. تو اسی طرح روزوں کا سوچ سکتے ہیں کہ میرے فرض روزے میں کتنے رکھ چکی، کتنے چھوڑ چکی، کتنے ابھی رکھنے باقی ہیں. فرض روزوں کے علاوہ میں کس طرح اضافہ کر سکتی ہوں نوافل کے ساتھ، نفل بھی روزے رکھنے کے ساتھ. اسی طرح اور چیزوں کی بھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے اخلاق، اپنے کردار کی بھی، کون کون سی میرے اندر برائیاں ہیں، میں ان کو نکالنے کی کوشش کرتی رہی ہوں، ابھی تک میں اس میں کامیاب نہیں ہوئی، یا کون سی بھلائیاں ہیں جو مجھے اپنے اندر لانی ہیں. میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو کتنا سمجھ چکی ہوں، کتنا بھی باقی ہے، کتنے پہ سمجھ کے عمل کر رہی ہوں اور کتنے میں سوچ میں پڑی ہوئی ہوں. کیونکہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہمیں بعض دفعہ اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ ہم کبھی سوچ سکیں کہ کیا ہم آج اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پڑ جائے تو تیار بھی ہیں یا نہیں. ہم اتنے مشغول ہیں کہ خیال بھی نہیں رہتا کہ یہ بھی سوچنے کی کوئی بات ہے، یہ بھی توجہ دینے کی کوئی چیز ہے. تو اس کے لیے وقت ضرور نکالیے. سوچ لیں، آج اگر مجھے فرشتے لینے کے لیے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے لیے حسرت بن جائیں گی کہ کاش میں یہ کر لیتی. اس چیز کو جب آپ سوچیں گے تو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے خود بخود اپنے عمل آنے لگیں گے. اور ہم جتنے بھی جوان ہوں، جتنے بھی طاقتور ہوں، کسی وقت بھی جانے کا ٹائم آ سکتا ہے. یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں अगर आज फरिश्ते मुझे लेने आ जाएं। लिहाजा अपनी तैयारी रखने की जरूरत है, और तैयारी के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। किस चीज की तैयारी करनी है, कौन सा अमल बढ़ाना है, कौन सी बुराइयां जो खत्म करनी है, और जरूर ये सवालात खुद से पूछें और खुद को बिल्कुल ईमानदारी के साथ जवाब दें। हमने किसी और को नहीं जवाब देना, अपने आप से कम से कम हम सच्चे हो जाएं। जानते हैं हमारे असलाफ किस तरह अपना मुहासबा किया करते थे? एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि उन्होंने अपने घर में एक कब्र बना रखी थी, यानी एक गड़ा खोद रखा था। उसमें जाके लेट जाया करते थे और खुद से सवाल करते थे, ए नफ्स, अब बता कि तू क्या चाहता है। सोचे वो लोग कितने सीरियस थे अपनी आखिरत के बारे में, कि वो इस दुनिया में रहते हुए ही फिगर आउट करना चाहते थे कि वहां हमें क्या चीज होगी जिसकी जरूरत होगी, इसका हमें आज पता चल जाए। हम तो इसको बुरा समझते हैं ना, कि ऐसी बात भी ना करो। वो इसको हकीकत समझते थे और उसको अपनी आंखों के सामने देखते थे, क्योंकि जब वक्त आ जाएगा तब अगर हमने इन सवालों के जवाब पा भी लिए तो क्या फायदा होगा। ये चीज तो यहां पता होनी चाहिए, और टाइम टू टाइम इंसान को अपने आप से ये सवाल करते रहना चाहिए, खुद पर तारी करना चाहिए कि मेरे पास फरिश्ते आ गए। जैसे वो अपने आप से पूछते थे ना कि अब तू क्या चाहता है, तो जाहिर है नफ्स तो कहेगा कि हाय मैंने तो ये करना था, ये करना था, मुझे ये चाहिए था, मेरा ये काम रहता था। यकीन जाने किसी को ये पता चल जाए ना कि उसको कोई ऐसी बीमारी लग गई है और डॉक्टर बता दे कि आपके पास सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, तब ऐसे लोगों का रोना धोना देखें, वो इतना रोते हैं इस बात पर कि हाय हमने तो ये करना था भी, हमने तो वो करना था, बहुत बहुत सारे प्लान होते मगर किया कुछ नहीं होता, सोचते ही रह जाते हैं। और इसी में अपने वक्त को गुजारते जाते हैं, डिले करते जाते हैं, कल कल कल। इमाम इब्ने कय्यम फरमाते हैं, एक लड़की ताऊन से वफात पा गई। उसके बाप ने उसको ख्वाब में देखा तो पूछा, मेरी बेटी बताओ आखरत के हालात क्या हैं? लड़की ने कहा, ये एक बहुत संजीदा मामला है जो हमें दरपेश है, यानी बहुत सीरियस मैटर है ये। हम जानते थे मगर हमने अमल नहीं किया। अल्लाह की कसम, आज अगर एक तस्बीह पढ़कर या नमाज की सिर्फ एक रकत पढ़कर मैं अपने आमाल नामे में नेकी का इजाफा कर सकूं तो मुझे ये ज्यादा महबूब है पूरी दुनिया से और जो कुछ भी इसमें है। तो वाकई अगर सोचा जाए इस बात को सामने रख के, तो कितनी ही बातें हैं जो हमें पता हैं। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं, इसमें आपको बहुत सारी नेकी की बातें बताई जाती हैं जिनसे आप अपने अजर को बढ़ा सकते हैं, जिनसे आप अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में आपको रहनुमाई की जाती है, मगर अमल करना तो हमारा काम है। अब जिसको पता ना हो उसकी तो अलग बात है, मगर जिसको पता भी हो और वो अमल में कोताही करे तो वो किसी और को दोष नहीं दे सकता सिवाय अपनी जात के। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, मिसाल के तौर पे आप सबको पता है कि ये रमजान का महीना चल रहा है, इसमें नेकी कितनी गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। नफल फर्ज के बराबर फर्ज, 70 फर्जों के बराबर एक सेल लगी हुई, नेकियां बहुत सस्ते भाव में मिल रही हैं और बिखरी पड़ी है हमारे इर्द गिर्द। और हमारे अंदर हिम्मत भी है, हमारे पास ताकत भी है, हमारे पास वक्त और सेहत भी है, मगर फिर भी अक्सर हम इन नेकियों की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। नेकियों के कई मौके हमारे सामने आते हैं और गुजर जाते हैं, मगर हम अपनी सुस्ती की वजह से, या कभी गफलत की वजह से, या आराम तलबी की वजह से बस बेपरवाह रहते हैं, जैसे ये कोई बिग डील नहीं है, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेकी कर भी ली तो ठीक है, नहीं भी करी तो कोई रंज नहीं, कोई गम नहीं, कोई उसके छूट जाने का अफसोस नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारी सोचें कहीं और की हैं, हमारी फिक्रें ही कुछ और हैं, हमारे गम कुछ और हैं। आखिरत की फिक्र तो हमने लगाई ही नहीं, वहां के गम हमने पाले ही नहीं। लिहाजा आखिरत से बेपरवाही की वजह से हम दिनों को गुजारते ही चले जाते हैं और कभी सोचते भी नहीं, और खुद को कभी उस तरह से खपाते भी नहीं जैसे दुनिया के लिए हम खपाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि हमें पता नहीं है, हमें पता भी है। अब देखिए, किसको नहीं पता कि कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है और उसने हमारी हिदायत के लिए ये पैगाम हमारे लिए भेजा है। इसके बावजूद हम अपना वक्त फजूल एक्टिविटीज में गुजारते रहते, मगर कुरान को सीखने की तरफ नहीं आते। हमें पता भी है कि सदका करने पर 10 गुना अजर तो दुनिया में अल्लाह ताला फरमाता है, और रमजान में तो कई गुना ही अजर बढ़ जाता है, फिर भी ईद की शॉपिंग के लिए हम ज्यादा खर्चा करते हैं सदका करने की निस्बत। हमें पता है कि इंसान को उसके गुनाह हलाक कर देने वाले हैं, और गुनाहों की माफी के बहुत सारे मौके हैं। मसलन हज्जे मबरूर से पिछले सारे गुनाह माफ हो सकते हैं, इंसान एक नए पैदा हुए हुए बच्चे की तरह पाक साफ हो जाता है, फिर भी हमें अपने गुनाह बख्शवाने की बहुत हिरस नहीं, इतना ज्यादा शौक नहीं। हम वेकेशन प्लान कर लेते हैं मगर हज की प्लानिंग नहीं। हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर और इशा की नमाज जमात से अदा करने का इतना अजर है कि अगर लोगों को पता चल जाए तो वो अपनी सीरीन के बल जाएं मस्जिदों की तरफ उस नमाज को अदा करने के लिए। इतना अजर जानते हुए भी हमें वो अजर पाने की कोई ऐसी तमन्ना नहीं, कोई ऐसी फिक्र नहीं, कोई ऐसा शौक नहीं कि हम रोजाना फजर और इशर मस्जिद में जाके पढ़ें। इसी तरह हम जानते हैं कि रमजान में कयामुल लैल करने से पिछले सारे गुनाह माफ हो सकते हैं, मगर हम टीवी के आगे बैठे रहते हैं रात रात तक, मगर कयाम करने की फिक्र नहीं करते। हम जानते हैं सब कि मौत किसी वक्त भी आ सकती है, और एक दफा मौत आ गई तो वापस जाना मुमकिन नहीं होगा कि हम जाके अपनी वो नेकियां जो हमने कल पे डाली नहीं थी वो करके आ जाएं। तब भी हम कोई फिक्र नहीं करते इन नेकियों की, तब भी हम उनको कल पे छोड़े जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारी हर सांस हमें हमारे अंजाम से करीब कर रही है, तब भी हम खेल तमाशों में और नॉन सीरियस चीजों में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम जानते हैं सब कि कयामत आने वाली है, और एक दिन जब कयामत आ जाएगी तो हमें अल्लाह ताला के आगे खड़े होना पड़ेगा और इस सारी जिंदगी का हिसाब देना होगा। तब भी हम गफलत में जिंदगी गुजारे जाते हैं और उस दिन की कोई तैयारी नहीं करते, जबकि आज अमल का वक्त है हिसाब का नहीं, कल हिसाब का वक्त होगा, अमल का वक्त खत्म हो चुका होगा। आज हम जिंदा हैं, आज हम सांस ले रहे हैं, और यही वो वक्त है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। तब भी हमें परवाह नहीं, और हम शायद उस वक्त का इंतजार करते हैं कि मौत आके सर पे खड़ी हो जाए और फिर हम कहें, या अल्लाह हमें सिर्फ एक चांस और दे दे, एक चांस। मगर तब चांस नहीं दिया जाएगा, तब कहा जाएगा, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दे दी थी कि जिसमें अगर तुमने नसीहत पकड़नी होती तो पकड़ लेते। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अपनी जिंदगी के उस दिन पे रो कि जो गुजर गया और उसमें तुमने नेकी नहीं कमाई। और हमारा तो एक दिन क्या, कई दिन बेकार और बेमकसद कामों में गुजर जाते हैं। जब पता ही ना हो तब तो अलग बात है, मगर हम सब खुद को बहुत समझदार कहते हैं। कितने ही रमजान हम ऐसे गुजार चुके हैं जो बेशऊरी के हैं, जिनमें हमें कोई इल्म भी नहीं था। आज पता है, और तब भी अगर हम वो इससे काम ना लें तो क्या फायदा ऐसे पता होने को। हज़रत अली फरमाते हैं, अव्वल उम्र में जो वक्त जाया किया आखिर उम्र में उसका तदारुक कर लो ताकि अंजाम बखैर हो। तो चलो बचपने में अगर खेल कूद के गुजार दिया, टीन एज ऐसे ही गुजार दी, 20s ऐसे ही गुजार दिए, कम अज कम अब तो जाके सोचने की जरूरत है कि किसी वक्त भी टाइम ओवर हो सकता है, किसी वक्त भी घंटी बज सकती है। क्यों मैं अपना वक्त ऐसे बेकार चीजों में गुजारूं? हमने जो अपनी जिंदगी का वक्त बेकार गुजार दिया वो तो गंवा दिया, जो रह गया है उसको तो ना गंवाएं, उसमें तो सीरियस हो जाएं। दरअसल इंसान उसी इम्तिहान की तैयारी ज्यादा करता है जिसको वो अहमियत ज्यादा देता है। एक अच्छा स्टूडेंट तैयारी के दिनों में हर एक्टिविटी को छोड़ देता है और इस वक्त को बस पढ़ाई में गुजारता है। अक्सर स्टूडेंट्स तो रातों को भी जाग के तैयारी करते हैं, हत्ता कि खाना पीना भी ज्यादा नहीं खाते कि नींद ना आ जाए। ये तो दुनिया के इन मामूली से इम्तिहानों का हाल है, जो कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है, जिनमें एक बार अगर फेल भी हो गए तो दोबारा भी इम्तिहान में बैठ सकते हैं। मगर उस इम्तिहान का क्या होगा जिसमें एक बार फेल हो गए तो दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा, और जिसकी तैयारी का वक्त सिर्फ ये दुनिया की जिंदगी है, इतना मुख्तसर सा वक्त है, ये हाथ से निकल गया तो एक सेकंड भी दोबारा नहीं आ सकता। सामईन कराम, अपनी जिंदगी में नेकी को कीमती समझिए, इसके लिए भाग दौड़ कीजिए, इसका एहतमाम कीजिए, इसके लिए सोचें कि मैं कैसे बढ़ाऊं, इसको ऐसे ही फारिग वक्त का मशगला ना समझे। जो बातें सुने उनको अप्लाई करने की फिक्र करें। जिन लोगों के दिलों में वाकई अपनी आखिरत बनाने की फिक्र होती है, उनको तो अपनी नेकियां जमा करने का हर वक्त शौक लगा रहता है, एक ही धुन में वो जिंदा रहते हैं, और नेकी कर भी लेते हैं तो उनको कोई बड़ी नहीं समझते कि मैंने तो इतनी कर ली अब काफी हो गई। वो इसी खौफ में लरजा रहते हैं कि कहीं हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हमारी आखिरत बर्बाद हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नेकी कबूल होने से रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी नेकी की कमी रह जाए उस दिन निजात पाने के लिए। इनका तो ये हाल होता है कि वो दुनिया के ओहदे और इख्तियारात और जिम्मेदारियां भी कबूल करने से डरते हैं कि हाय कहीं ये ना हो कि इनका हिसाब देते हुए वहां पर हम कंगाल हो जाएं। उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम आपने सुना होगा। उनके वक्त में जो खलीफा थे वो बिस्तरे मर्ग पे थे और खलीफा ने लोगों को बुलाया मशवरा करने के लिए कि किसको अब आइंदा खलीफा बनाऊं अपने बाद। अब ये बाहर थे, जो भी अंदर जाने लगता उसको उमर बिन अब्दुल अजीज के साथी कहते कि अगर खलीफा हमारे बारे में पूछे तो हमारे लिए अच्छी बात कहना और सिफारिश कर देना कि मुझे ही खलीफा बनाया जाए। और उमर बिन अब्दुल अजीज का हाल ये था कि वो हर जाने वाले से कहते थे अगर खलीफा मेरे बारे में पूछे तो उनसे ये कहना कि उसको खलीफा हरगिज ना बनाइएगा। बाद में जब इनको पता चला कि इनको खलीफा बना दिया गया तो इस कदर परेशान हुए, इतनी अपने आप पे सख्ती करते थे, मुख्तसर सी इनकी खिलाफत का जमाना था। लेकिन उस खिलाफत के जमाने में इन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसे एहसास जिम्मेदारी के साथ गुजारा, इतने लर्जा रहते थे, जवाबदेही का खौफ इतना ज्यादा होता था, आम मामूल था इशा के बाद मस्जिद में बैठे रहते और दुआएं करते रहते और रोते रहते। एक दिन बीवी ने वजह पूछ ली तो फरमाया, मैं इस उम्मत के छोटे बड़े स्याह सफेद का मालिक हूं, यानी मेरे हाथ में दी गई है। फिर मैंने बेबस, गरीब, मोहताज, फकीर, गुमशुदा, कैदी और इन तरह के और लोगों को याद किया तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह इनके बारे में मुझसे सवाल करेगा। इस खौफ से मुझे अपनी जान का डर पड़ गया और इस खौफ से मेरे आंसू जारी रहते हैं। मैं जितना याद करता हूं कि क्या बनेगा, मेरा खौफ बढ़ता ही जाता है। उनकी बीवी कहने लगी कि वो और लोगों से भी ज्यादा नमाजें नहीं पढ़ते थे ना रोजे लगते थे, मगर और लोगों से भी ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाले थे और इनसे ज्यादा कोई अल्लाह से डरने वाला नहीं था। इतने परेशान रहते थे। एक बार आप सफर में थे, असबाब पीछे रह गया, आपके साथी आगे निकल चुके थे। एक जगह जब पड़ाव किया तो आपने देखा कि सफर करने वालों में जो अपना अपना सामान पहले भेज चुका था उसका सामान पहुंच गया और जो पीछे रह गए थे वो खड़े देखते रह गए, उनका सामान पहुंचा ही नहीं। तो ये देख के रो पड़े। उनके चचाजात ने रोने की वजह पूछी, फरमाया इस तरह कयामत के दिन जो शख्स ज्यादा राह पहले भेज चुका होगा उसको तो मिल जाएगा और जिसने आगे नहीं भेजा होगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। आज आगे भेजने का वक्त है हमारे लिए ताकि हमें वहां पे मिल जाए। जो आज हमने भेज दिया और जितना भेज दिया उतना ही मिलेगा। तो उसका हिसाब किताब नोट कर लें अपने पास कि कितना भेजा है, पेपर पेंसिल साथ रखें, अपने आप से सवाल पूछती जाएं और जवाब देती जाएं, फिर लिखती जाएं और फिर देख लें कि मैं वहां पर निजात पा सकूंगी इस अमल के साथ या नहीं। अपनी इबादात को भी जांचें, अपने अखलाक को भी जांचें, अपने मामलात को भी देखें, कहाँ किससे माफी मांगनी है, कहाँ किसके साथ ज्यादती की है, कहाँ किसी का हक देना है, सब लिखें। आज ये मुहासबा करेंगे तो जन्नत की प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। अल्लाह ताला हमें ईमानदारी के साथ अपना मुहासबा करने की और अपनी इसलाह करने की तौफीक दे। उम्मीद है कि आप लोग कुरान करीम की तिलावत कर रहे होंगे। एक ऐसी सूरत कुरान में है जो भी हमें जन्नत की प्रॉपर्टी दिलवा सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी रहनुमाई फरमाई है। फरमाया, कुरान की एक सूरत है जिसकी सिर्फ 30 आयात हैं और वो अपने पढ़ने वाले के मुतल्लिक झगड़ेगी हत्ता कि उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और वो सूरत कौन सी है? सूरतुल मुल्क। सूरह मुल्क 29वें पारे की पहली सूरत है। इसको पढ़ना कोई मुश्किल नहीं, इसको पढ़ना अपना मामूल बना दीजिए, खास तौर पे रात के वक्त सोने से पहले। आज की जो दुआ है वो यही है कि अल्लाह ताला हमारी जुबानों पर कलमा जारी फरमा दे और हमें मरते वक्त इसकी तौफीक हो ताकि हमारा खात्मा बिलखैर हो सके। तो उसी की दुआ है, अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए अल्लाह, हमारी मौत के वक्त हमें कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पे साबित रखना, क्योंकि उस वक्त शैतान का बहुत हमला होता है। तो उस वक्त ये ना हो कि हम कलमा भूल जाएं। हर एक को याद रखें, कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं होती, सब नहीं पढ़ पाते। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआएं किया करें कि अल्लाह ताला मरते वक्त कलमा नसीब कर देना। आज का जो जिक्र है वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कलिमात अल्लाह ताला को बहुत महबूब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब है। और इसी को हम जारी रखते हुए इन्हीं कलिमात में, यानी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसमें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को भी ऐड करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स ये कलिमात कहता है तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, पास समंदर की झाग के बराबर हो जाए। तो सहाबा ने पूछा कि समंदर की झाग के बराबर किससे? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन इबादत करने की, इखलास के साथ इबादत करने की और जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।